नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पक्कम रिएक्टर की उपलब्धि, जनगणना 2027, स्वच्छ ऊर्जा और जैव विविधता पर चर्चा की। वाशिंगटन हिल्टन में एक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी की आशंका के चलते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। देशभर में ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग बढ़कर 99% हो गई है और ओटीपी आधारित डिलीवरी 94.5% से अधिक हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने युवा पत्रकारों को अपने पेशे में ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। बांग्लादेश पुलिस ने संभावित आतंकवादी हमलों की धमकियों के मद्देनजर देशव्यापी सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमरीका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराकची एक बार फिर इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। दिग्गज फोटोग्राफर रघु राय का 83 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने तमिलनाडु और मेघालय में जमीनी स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक 5 वर्षीय परियोजना की शुरूआत की है। भारत मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चालू करने में सफलता हासिल करने पर देश को परमाणु वैज्ञानिकों की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा यात्रा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह परमाणु संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है और ब्रीडर रिएक्टर बिजली उत्पादन के अलावा भविष्य के लिए नया ईंधन विकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 56 गीगावाट से अधिक हो गई है। पिछले वर्ष ही इसमें लगभग 6 गीगावाट की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश के कई राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। गुजरात के कच्छ, पटान, बनासकांठा क्षेत्र में बड़े नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा आवश्यक है तथा युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बचाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बनगांव में ठाकुर नगर में रैली कर रहे हैं। वे एक अन्य रैली हुगली के हरिपाल में करेंगे। श्री मोदी उत्तरी कोलकाता के टंठनिया कालीबाड़ी में शाम को प्रार्थना करेंगे और बीके पाल एवेन्यू में खन्ना क्रॉसिंग तक रोड शो करेंगे। भाजपा नेता अमित शाह तहत नदिया अनुलिया में रैली करेंगे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता के भातर, पूर्वी वर्धमान और बेहाला पश्चिम में रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चिनार पार्क में जोड़ा मंदिर अंडरपास तक जुलूस करेंगे। सरकार ने देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की प्राथमिकता दी गई है और किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की सूचना नहीं मिली है। देशभर में ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करीब 99% तक बढ़ गई है और ओटीपी आधारित डिलीवरी 94.5% से अधिक हो गई है। मार्च 2026 में अब तक 5.36 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 2.61 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कनेक्शनों की कुल संख्या बढ़कर 7.97 लाख हो जाएगी। इसके अलावा लगभग 6 लाख ग्राहकों ने नए पीएनजी कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। कल तक 42,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन वापस कर दिए हैं। सभी रिफाइनरियों पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही है। वहीं पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। देशभर में खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने युवा पत्रकारों को अपने पेशे में ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने ये बात अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित रेस्पॉन्सिबल मीडिया इनिशिएटिव 2026 कार्यशाला में कही, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि जिम्मेदार मीडिया कार्यप्रणाली लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ इलाकों में मौसम संबंधी चुनौतियों के बावजूद देश में गेहूं का उत्पादन स्थिर है। वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं उत्पादन के बारे में मीडिया की खबरों के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि लगभग 3,34,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल की बुवाई की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। अमीरात में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। भारत और उज्बेकिस्तान का सातवां संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलिक उज्बेकिस्तान के नमगन में संपन्न हो गया है। दो सप्ताह के इस आयोजन में अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में कार्रवाई का अभ्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के एक होटल में गोलीबारी की घटना से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सुरक्षा निकासी पर संतोष व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी एक स्वर से निंदा की जानी चाहिए। यह घटना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान हुई। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने घटना के सिलसिले में कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसकी पहचान 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है। पिछले दो वर्षों में राष्ट्रपति ट्रंप पर हत्या के दो प्रयास हुई हैं। उन पर 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में राष्ट्रपति चुनाव की प्रचार रैली में पहला हमला हुआ था। एक अन्य हमले 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा के पाम बीच पर हुआ था। बांग्लादेश पुलिस ने आतंकी हमले के खतरे की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर देशव्यापी सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय के एक पत्र में कहा गया कि संसद भवन, धार्मिक स्थलों, मनोरंजन केंद्र और सैन्य तथा पुलिस कार्यालयों पर संगठित हमले हो सकते हैं। मीडिया खबरों में कहा गया है कि हथियार भंडारों को खासतौर पर निशाना बनाए जाने की आशंका है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने तमिलनाडु और मेघालय में जैव विविधता प्रबंधन के लिए पंचवर्षीय परियोजना शुरू की है। 48 लाख डॉलर से अधिक अनुदान वाली यह परियोजना वर्ष 2025 से 2030 तक के लिए है। तमिलनाडु में यह परियोजना मुदुमलाई और सत्यमंगलम बाघ अभयारण्यों सहित सत्यमंगलम क्षेत्र को कवर करेगी। मेघालय में इसे गारो हिल क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिसमें नोक्रेक जैव मंडल अभयारण्य, बालप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सीजू वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। लद्दाख में आज हज यात्रियों के पहले जत्ते को खारुल से रवाना किया गया। इस अवसर पर कारगिल के अपर उपायुक्त शबीर हुसैन और लद्दाख हज समिति की अध्यक्ष मोहम्मद अली मनाज उपस्थित थे। पहले जत्थे में 144 हज यात्री शामिल है। ये जत्था श्रीनगर से 30 अप्रैल को मदीना के लिए रवाना होगा। जाने माने फोटोग्राफर रघु राय का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे और 2 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। श्री राय ने अपनी फोटोग्राफी से दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। उनकी फोटोग्राफी को अक्सर आधुनिक भारत का दृश्य अभिलेख कहा जाता है। उन्होंने 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देश के नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल हिस्सों में हीटवेव की स्थिति और उसके बाद कम होने का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश में मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर ने राज्य के पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग, अंजो, लोहित, नामसाई और चांगलांग जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। आईपीएल क्रिकेट मैच में आज डबल हेडर में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से होगा। दिन के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।